दिन भर 7 दिसंबर दिन गुरुवार, सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहकर मणिशंकर अय्यर ने मांगी माफी। बार बार सेल्फ गोल क्यों करती है कांग्रेस?
मणिशंकर अय्यर एमने कहो आ मोदी तो नीच जाति नो छे, आ मोदी तो नीच छे।
राजस्थान में मुसलमान मजदूर की लव जिहाद के नाम पर हत्या, घटना का वीडियो बनाया, शव को लगाई आग।
ये मानव अधिकार का हनन नहीं, मानव अधिकार की हत्या है। ये एक सबूत है मानव अधिकार का और मानवता की मौत का सबूत है।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि वो बहुत नीच किस्म के हैं और उनमें कोई सभ्यता नहीं है। इसके बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस और वे इस बयान को लेकर मणिशंकर अय्यर से माफी की उम्मीद रखते हैं। नेपाल की जनता ने आज हुए संसदीय चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। प्रशासन को आशा है कि देश के लोकतंत्र के परिवर्तन में यह एक अहम कदम होगा। मतदान के दूसरे और अंतिम चरण में बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। राष्ट्रीय संसद के मतदान के अलावा 7 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए भी मतदान हुए हैं। 2 साल पहले अपनाए गए नए संविधान के तहत ये पहला चुनाव है। 65 सालों में ग्रीस का दौरा करने वाले रेचप तैयब एर्दोगान तुर्की के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। हालांकि उनका दौरा विवादों में आ गया है। दरअसल एर्दोगान ने कहा है कि पहले विश्व युद्ध के बाद आधुनिक तुर्की के लिए सीमाओं का निर्धारण करने वाली संधि की समीक्षा का समय है। वहीं ग्रीस सरकार ने कहा है कि लॉसेन संधि बातचीत योग्य नहीं है। हम इस संधि पर बातचीत नहीं कर सकते। इस संधि में समीक्षा और किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये संधि मान्य है क्योंकि ये उन सभी पक्षों को शामिल करती है जिनको करना चाहिए। ये थे ग्रीस के राष्ट्रपति प्रोकोपिस पावलोपुलस के शब्द। ब्रिटिश विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मध्य पूर्व में संघर्षों के समाधान के लिए पश्चिम के अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। लंदन में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा सीरिया में दखल न देने का फैसला युद्ध के प्रभावों से नहीं बचा सकता है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यरूशलम को इसराइल की राजधानी मानने पर फिलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन हमास के नेता ने एक नए इंतिफादा यानी विद्रोह की अपील की है। गजा में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्माइल हनिया ने ये अपील की। वहीं इसराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दूसरे देशों का नाम लिए बिना कहा है कि ट्रंप की तरह ही इच्छा रखने वाले दूसरे देशों के वो संपर्क में हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की ब्रिटेन, फ्रांस और सऊदी अरब ने निंदा की है। कई महीनों की राष्ट्रव्यापी बहस के बाद ऑस्ट्रेलियाई संसद ने समलैंगिक विवाह के कानून का समर्थन किया है। संसद के निचले सदन ने उत्साह के साथ इस कानून को मंजूरी दी। 150 सांसदों में से केवल 4 ने इसके खिलाफ मतदान किया था। ये कानून राष्ट्रीय मतदान के बाद बना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बहुसंख्यक आबादी ने समलैंगिक विवाह का समर्थन किया था। हाँ, मैं कहूंगी कि मुझे गर्व है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा कानून पारित करने के लिए सहमत हो गया। इसने 10 साल के लंबे कैंपेन का समय लिया। आखिरकार ये हो रहा है और मुझे इस पर गर्व है। ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये थे एक ऑस्ट्रेलियाई महिला जैस लीस के शब्द। अफ्रीकन यूनियन ने कहा है कि लीबिया सरकार के कब्जे वाले क्षेत्रों के हिरासत केंद्रों में मौजूद 20,000 अफ्रीकी प्रवासियों को वापस वे उनके देश अगले 6 हफ्तों में भेजेगा। अफ्रीकी देशों की सरकारों ने ऐसा फैसला तब लिया है जब टीवी पर ऐसी रिपोर्टें प्रसारित हुई थीं कि उप सहारा के अफ्रीकी लोगों को गुलामों के तौर पर बेचा जा रहा है। अफ्रीकी यूनियन ने कहा है कि वह फंसे हुए प्रवासियों के लिए वाणिज्य दूत संबंधी सेवाएँ मुहैया कराने पर काम कर रहा है। केन्या के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि विपक्षी नेता राइला ओडिंगा द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेना राजद्रोह होगा। अक्टूबर में दोबारा हुए राष्ट्रपति चुनावों का ओडिंगा ने बहिष्कार किया था, जिसको पद पर विराजमान उहुरू कान्याटा ने जीत लिया था। ओडिंगा ने कहा है कि वो मंगलवार को अनाधिकारिक तौर पर शपथ लेंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की दूसरी सभा दिन भर, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। शुरुआत गुजरात से, जहां आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। परसों यानी 9 दिसंबर को वहां पहले चरण के मतदान होने हैं, और इससे ठीक पहले एक नई वजह से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर प्रधानमंत्री ने आज सूरत में जवाब दिया, जिसके बाद मणिशंकर अय्यर को माफी मांगनी पड़ी। दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी पर मणिशंकर अय्यर ने कहा,
मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है।
मणिशंकर के बयान से होने वाले राजनीतिक नुकसान को भांपकर राहुल गांधी के दफ्तर ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के लिए मणिशंकर अय्यर ने जिस भाषा और लहजे का इस्तेमाल किया है, मैं उसे ठीक नहीं मानता हूं। उन्होंने जो कहा, कांग्रेस और मैं दोनों ही उनसे इसके लिए माफी की उम्मीद करते हैं। 7 दिसंबर को गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का आखिरी दौर था, और सूरत की रैली में प्रधानमंत्री जवाब देने का मौका चूकने वाले नहीं थे।
श्रीमान मणिशंकर अय्यर, एमणे कयो आ मोदी तो नीच।
श्रीमान मणिशंकर अय्यर ने कहा, मोदी तो नीच है। भाइयों बहनों, ये अपमान गुजरात का है कि नहीं? ये अपमान भारत की महान परंपरा का है कि नहीं? ये मुगल मानसिकता है। आपने हमको गंदी नाली का कीड़ा कहा, आपने हमको नीच कहा, लेकिन हम अपने संस्कारों के मुताबिक ही जीने वाले लोग हैं।
लेकिन चुनावी मौसम में बात यहीं नहीं रुकती दिखी। बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
हमारे प्रधानमंत्री को नीच कहा है। हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर कि अभी सूरत की सभा में उन्होंने बहुत शालीनता से जवाब दिया। कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि आप विचलित ना हो, देश की जनता और गुजरात की जनता एक जवाब देगी। हम सभी कार्यकर्ता बहुत दुखित हैं। आज मोदी जी सिर्फ हमारी पार्टी के नेता नहीं है, मोदी जी भारत की जनता के द्वारा चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय लीडर है।
हालांकि कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर अपना स्टैंड स्पष्ट करने में जरा भी देर नहीं की। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी के हवाले से कहा कि पार्टी मणिशंकर अय्यर के बयान की आलोचना करती है। फिर भाजपा पर घड़ियाली आंसू बहाने और दलित विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया।
घड़ियाली आंसू तो आप बहाएंगे, बाबा साहब का नाम लेकर वोट बटोरने तो जाएंगे, पर दलितों का शोषण जो भाजपा की केंद्रीय सरकार करती है और प्रांतीय सरकार, उसका जवाब मोदी जी कभी नहीं दे पाएंगे।
हालांकि राहुल गांधी के ट्वीट के बाद वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा, जब मैंने नीच कहा तो मेरा मतलब निचले स्तर से था। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, अगर इसका कुछ और अर्थ है तो मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन अय्यर के इस बयान से उन्हीं के एक पुराने बयान की याद ताज़ा हो गई, जब 2014 के चुनावों से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय बेचने का निमंत्रण दे दिया। जानकार मानते हैं कि उस बयान का कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ था।
दिलनवाज पाशा से रिपोर्ट सुन रहे थे आप। अब से थोड़ी देर पहले इसी मसले पर बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो संपादक राजेश जोशी ने कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता से बात की और पूछा कि कांग्रेस बार बार ऐसी गलतियां क्यों करती है।
वो शुरू से राजीव गांधी के पीरियड से ही कई चीजों में बहुत बेबाकी से, मतलब ही वेरी गुड डिप्लोमेट होने के बावजूद उनकी जो कलीग्स हैं, अभी भी कुछ समय पहले एक फॉरेन सेक्रेटरी पहले रहे, हम उनके साथ बात कर रहे थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि मणिशंकर अय्यर में ये पॉलिटिकल चीज कम है, वो उनके नेचर में एग्रेसिव जिसको कहना चाहिए।
ये बात तो ठीक आप कह रहे हैं कि राजनीतिक उसमें ये इस बयान में राजनीतिक कम है, लेकिन इसमें कूटनीति भी बहुत नहीं है।
यही बिल्कुल मेरा यही मानना है कि कूटनीति का होते हुए भी कपिल सिब्बल अच्छे वकील होते, दोनों को आप देखिए, दोनों ही ऐसे समय में आना जब गुजरात में कांग्रेस की स्थिति राहुल गांधी की वैसे एक एटमोसफियर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उससे वो जीत ही जाते, जीत जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अपना जो प्रोफाइल जो इमेज बनाया, जो कोशिश कर रहे थे कि अपने को गियर अप कर लिया है, पहले से बदलाव आया है, वो इससे दो बड़े नेताओं से, और कपिल सिब्बल भी पहले भी कुछ इस तरह के नाजारे आंदोलन के समय में उनको फॉलो किया, और मणिशंकर अय्यर को भी। मणिशंकर अय्यर बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बड़े समझदार डिप्लोमेट भी एक तरह से, पाकिस्तान के साथ संबंधों में उनकी एक अहम भूमिका रही है। वो जिस तरह से डैमेज करते हैं वो पॉलिटिक्स के लिए, और किसी भी जिस नेता के साथ हों, उनके लिए बहुत डैमेजिंग होता है।
लेकिन अभी 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 राहुल गांधी ने एकदम ट्वीट करके ट्विटर पे मणिशंकर अय्यर से कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए उनको, और मणिशंकर अय्यर ने माफ़ी मांग भी ली। लेकिन हाँ, क्या गुजरात के चुनाव पर ये जो पूरा हंगामा हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये इस तरह की भाषा मुगलों की भाषा है, हाँ, तो हाँ, इसका क्या असर गुजरात की कितनी सीटों पर पड़ सकता है?
देखिए, मेरा तो मानना है कि कांग्रेस ने पिछले 2-4-5 दिनों में जो इस तरह के किए हैं, इससे असर पड़ेगा। जो उनके अनुकूल कुछ हो रहा था एक वर्ग में, जो थोड़ा शिक्षित वर्ग भी इसको कह सकते हैं, युवा वर्ग में, पटेल समुदाय को छोड़ दे, समुदाय का जो डैमेज उनका होना है उससे उसका फर्क शायद ना भी पड़े, लेकिन जिन इलाकों में महिलाओं में खास करके एक बड़ा वोटर होता है जो राहुल के प्रति सहानुभूति भी दिखा सकता था कांग्रेस के बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे मालूम है गुजरात में उस समय से जाता रहा हूँ 72-73 से, वहाँ के समाज में जिस तरह का एक नेचर है, ये जिस तरह के वक्तव्य पहले जैसे मंदिर जाना वाला जो उनको सलाह दी गई थी वो ठीक थी, उसी तरह से वो मंदिर जा रहे थे उसका उतना नुकसान नहीं था, जो जनयू वाला एक बयान दिया गया उसका एक लोगों पे असर दूसरे जो समुदाय है।
कांग्रेस बार बार सेल्फ गोल करती जा रही है,
बिल्कुल
इसका एहसास नहीं है क्या कांग्रेस को?
नहीं, कांग्रेस का ऐसा इसलिए नहीं है, आप बिल्कुल इसको मैं कह रहा हूँ कि उनके यहाँ नियंत्रण जो होना चाहिए वो नहीं है।
तो इसमें सवाल ये आएगा कि जो राहुल गांधी अपनी पार्टी के ही कथित बड़बोले लोगों को नहीं नियंत्रण में रख पाएंगे, वो देश को कैसे चलाएंगे, ये सवाल का जवाब कैसे देगी कांग्रेस?
बिल्कुल नहीं दे पाएगी। और इवन जो उनके प्रति जो थोड़ा वापस जो झुकाव हो सकता था कांग्रेस जनों में ही, आप उनको छोड़ दीजिए ना देश को, बहुत आगे की बात है जो देश के लिए है। अभी जो समस्या आ रही है प्रदेशों के जो नेता है उनके साथ संवाद की जो संभावनाएं बनती है, और सेकंड जनरेशन जिन लोगों को आप देखें, जो पहली पंक्ति में जो पुराने लोग और नए लोगों के बीच तालमेल की जो बात कही गई थी, तब भी मेरा ऐसा मानना है कि वो केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह हुआ है। राहुल गांधी का एक नई क्लास तैयार करने के चक्कर में न वो पुरानी के साथ हो पाए हैं, न नए में उन लोगों को ले पा रहे हैं जो पार्टी के लिए हों।
वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता, मैंने गुजरात में मौजूद हमारे संवाददाता रॉक्सी गागेतकर छारा से भी संपर्क किया और उनसे पूछा कि चुनाव से ठीक पहले जमीन पर क्या मणिशंकर अय्यर के इस बयान का कोई असर हो सकता है?
ये जो पहले फेज का जो इलेक्शन कैंपेन आज खत्म हुआ उसमें नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल एक ये इसको जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट था उसको पूरी तरह से इलेक्शन कैंपेन में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ये देखना पड़ेगा कि अभी इसको कांग्रेस किस तरह से टैकल करती है, क्योंकि हर बार यही हुआ है। लास्ट टाइम 2007 में मौत का सौदागर का एक स्टेटमेंट सोनिया गांधी का था, उसका वो सारे इलेक्शन मुद्दे एक तरफ रह गए, और सोनिया गांधी का वो जो मौत का सौदागर वाला स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को लेकर नरेंद्र मोदी ने 2007 का इलेक्शन कंटेस्ट किया। बाद में जो वो चाय वाला कमेंट को लेकर भी एक ये हुआ था। अभी ये तीसरी बार ऐसे इस तरह से हुआ कि मणिशंकर अय्यर का ये जो स्टेटमेंट है, अभी ये देखना है कि इसमें कांग्रेस इसको किस तरह से टैकल करती है, क्योंकि अब बीजेपी तो बिल्कुल अब नेक्स्ट फेज जो होगा सेकंड फेज का जो अभी इलेक्शन कैंपेन बाकी है उसमें इस चीज को बड़ी तरह से लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश करेगी।
एक चीज और बताएं आप, पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था आज, मोदी की इस रैली के अलावा और क्या क्या हुआ, किस किस की रैली हुई, किसने क्या क्या बयान दिए?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूरत में पब्लिक रैली हुई, उसके साथ अमित शाह सौराष्ट्र के अलग अलग रीजन्स में आज मौजूद थे। एक आदित्यनाथ जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वे राजकोट में आज उन्होंने अपनी एक रैली की। मनमोहन सिंह राजकोट में था। अहमद पटेल का भी एक स्टेटमेंट आया था, एक जो पोस्टर लगा था आज सूरत में नरेंद्र मोदी की रैली के पहले, कि क्या आप अहमद पटेल को सूरत गुजरात का कायदे आजम नहीं बनाना चाहेंगे, इस तरह का एक पोस्टर अहमद पटेल को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए लगा था। उसको लेकर अहमद पटेल का भी एक स्टेटमेंट आया है कि आज ही की ये जो स्टेटमेंट, ये जो बीजेपी ने ये किया है, कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने, बीजेपी जीतने के लिए इतनी तत्पर है कि वो अब इस तरह से पोस्टर्स भेज रही है।
गुजरात से हमारे सहयोगी रॉक्सी गागेतकर छारा को सुन रहे थे आप।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब बात राजस्थान की, जहां राजसमंद में अल्पसंख्यक समुदाय के एक मजदूर की लव जिहाद के नाम पर हत्या करके उसे जला दिया गया। घटना का वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस घटना पर गहरा रोष जताया है और नागरिक अधिकार समूहों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस्तीफा मांग लिया है। नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
उसके सामने मौत थी, वो जिंदगी के लिए मिन्नतें करता रहा मगर उस व्यक्ति ने कोई रहम नहीं किया। बंगाल से मजदूरी करने आए अफराजुल को बहुत बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। घटना दक्षिण राजस्थान के राजसमंद की है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक स्थानीय युवक शंभू दयाल रैगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना का वीडियो बनाया गया। घटना के वक्त शंभू दयाल की मानसिक तौर पर बीमार 10 साल की बेटी और एक भांजा भी मौजूद थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी गहलोत्रा मीडिया से मुखातिब हुए और कहा, पुलिस अभियुक्त को फांसी जैसी सख्त सजा दिलाने की मांग करेगी।
उससे पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश पूरी होगी तो सारी सच्चाई सामने आएगी। कानून के अनुसार पूरी गहराई से तफ्तीश को करते हुए, समस्त प्रकार के साइंटिफिक एविडेंस को बीच में रखते हुए हम अभियुक्त को सलाखों के पीछे पहुंचाएं, मुलजिमों को कानून में प्रदत्त जो सजा है वो भारी से भारी सजा हम उसको दिलवाएं। एट द एंड ऑफ ट्रायल हम भी फांसी की सजा की मांग करेंगे। ये लगता है कि कोई नॉर्मल इंसान इस तरह की घटना नहीं कर सकता।
पुलिस को मिले वीडियो में अभियुक्त लव जिहाद का खात्मा करने जैसी बातें कहता हुआ दिखाई दिया है। पुलिस के अनुसार अब तक उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। पुलिस इस घटना का मकसद पता कर रही है। घटना के बाद सुरक्षा प्रबंध बढ़ा दिए गए हैं। गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया ने कहा, बहुत हृदय विदारक घटना है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने बीबीसी से कहा, वे इस घटना से बहुत उद्वेलित हैं।
ये मानव अधिकार का हनन नहीं, मानव अधिकार की हत्या है। ये एक सबूत है मानव अधिकार का और मानवता की मौत का सबूत है कि आज पशु भी इससे खुश नहीं होंगे, लेकिन वो यह तो कहेंगे कि हम भाग्यशाली हैं कि हम जानवर हैं, हम इंसान नहीं हैं। मैं बड़ा उद्वेलित हूँ इस सबसे।
सामाजिक संगठनों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने कहा, 9 माह में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की ये चौथी घटना है। जमायत इस्लामी के डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय बहुत डरा हुआ है।
राजस्थान में हम पहले भी इनसिक्योर फील कर रहे थे। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मारपीट की घटना, कभी गायें उठाकर ले जाने की घटना, लिंचिंग की घटना, मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन से चलाया जा रहा है।
इंसान के हाथ में बहुत कुछ है। कोई इतना कुछ कर जाता है कि लोग उसमें फरिश्ता देखने लगते हैं, लेकिन कोई ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
इसी मसले पर मैंने आपसे थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा से भी बात की। उनसे पूछा कि लव जिहाद का विचार संघ ने दिया है और इसी विचार के नाम पर एक हत्या कर दी गई, तो इससे क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंतित नहीं है?
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कानून व्यवस्था से जुड़ी ही बात है। और मुझे लगता है जब भी इस तरह की घटना को विचार विचारधारा से जोड़ते हैं तो वह ऐसी घटनाओं को और भी लेजिटिमेसी देने का, वैधानिकता देने का काम करता है। जिन लोगों ने ऐसा जघन्य काम किया है उनको अविलंब वहां की पुलिस गिरफ्तार करे, उन्हें अविलंब सजा दी जाए। क्योंकि लव जिहाद पर जो कैंपेन है वह एक डेमोक्रेटिक नॉन वायलेंट तरीके से कैंपेन है। इंटरफेथ, सभी इंटरफेथ मैरिज लव जिहाद नहीं है और सभी लव जिहाद इंटरफेथ मैरिज नहीं है।
आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो अपराध बढ़े हैं, मजहबी नफरत के आधार पर की जाने वाली जो हत्याएं हैं, जो पहलू खान अखलाक और उसी क्रम में मोहम्मद अफराजुल की हत्या को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो इनकी वजह क्या है? अगर समाज के स्तर से देखें, लोग ऐसे आरोप भी लगाते हैं कि ऐसा इसलिए होने लगा है क्योंकि अपराधियों के एक वर्ग को ये लगता है कि अब इस समय हमारी केंद्र में सरकार है जो हिंदू आस्था के नाम पर हमें डिफेंड कर सकती।
खाप पंचायत के द्वारा भी खाप हरियाणा में कई बार ऑनर किलिंग हुई है, तो क्या वो इसी तरह की विचारधारा का प्रकट था? देखिए, जब समाज में प्रतिक्रियावाद उपस्थित है और इस प्रतिक्रियावाद का एक बहुत बड़ा कारण विदेशी ताकतों को भारत की समाज को अनसेटल करना है और हर घटना के लिए आरएसएस के पास पहुंच जाना, हिंदुत्व को जिम्मेदार ठहरा देना, इसी कारण से हम समस्या के जड़ जमीन को नहीं खोज पाते। कोशिश यह होती है कि आरएसएस को, हिंदुत्व को विमर्श से ही बाहर रखा जाए, सिर्फ उन्हें गाली सुनने के लिए, उन्हें आरोपित होने के लिए छोड़ दिया जाए।
क्योंकि संघ, आप कह रहे हैं संघ का एक अहिंसक कैंपेन है, तो कुछ लोग अगर उस विचार को समझ नहीं पाए हैं और हिंसा पर उतारू हो गए तो ये संघ के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं?
कुछ लोग तो यह भी नहीं समझ पाते हैं, कोई भी अच्छी बात कही जाए नहीं समझे, वैसे ना समझ लोग को आपराधिक है और वो ये इस लव जिहाद के कारण वो घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। उसने लव जिहाद का नाम देकर अपने आप को एक एक अब उस घटना को एक विचार से जोड़ने की कोशिश की जिसने क्या वो क्रिमिनल है।
एक आखिरी चीज सर कि जब अखलाक की हत्या के जो आरोपी थे उनमें से एक की मौत हो गई तो वहां केंद्र के एक मंत्री पहुंचे थे और उनके जो आरोपी जिनकी मौत हुई थी उनके शव को तिरंगा से में लपेटा गया था।
देखिए घटनाओं का माला बनाना ये सेकुलरिस्ट राजनीति का एक तरीका है। 8-10 घटनाओं को जोड़ के एक नैरेटिव तैयार करते हैं, बेसिकली उनका उद्देश्य संघ को बदनाम करना होता है।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर अमरीकी मान्यता दिए जाने के बाद फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन हमास ने नए इंतिफादा का ऐलान कर दिया है, यानी संगठन ने फिलिस्तीनियों से इस फैसले के खिलाफ उठ खड़े होने और प्रतिरोध करने को कहा है। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए प्रियंका दुबे से।
गाजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास नेता इस्माइल हानिये ने इंतिफादा का ऐलान किया है। ये इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों का तीसरा बड़ा प्रतिरोध या इंतिफादा होगा। इससे पहले फिलिस्तीनी इलाकों पर इसराइल के कब्जे के खिलाफ सन 1987 से 1993 तक पहला प्रतिरोध हुआ था। दूसरे इंतिफादे की शुरुआत सन 2000 में हुई। इस्माइल हानिये ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को फिलिस्तीनियों के दिल में खंजर मारने जैसा बताया।
हमें पश्चिमी तट में प्रतिरोध संगठित करना होगा ताकि इस खुले हमले का जवाब दिया जा सके। अमेरिका का फैसला हमारे लोगों पर हमले जैसा है। यह फलस्तीनी जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। इसके जरिए मुसलमानों और ईसाइयों के पवित्र स्थल को निशाना बनाया गया है। यह फलस्तीनियों के धड़कते दिल यानी यरूशलम पर चाकू घोपना है।
हमास नेता इस्माइल हानिये के शब्द। उन्होंने इंतिफादा का ऐलान इन शब्दों में किया।
हम ज़ायोनिस्ट कब्जे के खिलाफ इंतिफादा की मांग और इसरार करते हैं। हमें इंतिफादा शुरू करने के लिए काम करना होगा। अब आधे अधूरे समाधान से काम नहीं चलने वाला। लोग बिना हिचके अपने गुस्से का इजहार करेंगे और समूचे यरूशलम और फलस्तीन पर अपने नैसर्गिक अधिकार को हासिल करेंगे।
उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा के लिए खुद को यरूशलम के इतिहास में जोड़ लिया है। ट्रंप के इस फैसले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। ब्रिटेन, फ्रांस और सऊदी अरब समेत पारंपरिक तौर पर अमरीका के सहयोगी राष्ट्रों में गिने जाने वाले कई देशों ने भी ट्रंप के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। अमरीका संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्थायी सदस्य है। फ्रांस, इटली और ब्रिटेन समेत 8 सदस्य देशों के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कल एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने की उम्मीद है। पारंपरिक अमरीकी सहयोगी राष्ट्र के तौर पर पहचाने जाने वाले सऊदी अरब ने ट्रंप के निर्णय को गैर जिम्मेदार कदम बताया है। वहीं फिलिस्तीनी हलकों ने इस अमरीकी निर्णय को खेदजनक बताते हुए विरोध प्रदर्शन और हड़तालें शुरू करने की घोषणा की है। हालांकि ब्रिटेन में इसराइल के राजदूत मार्क रिगेवे का मानना है कि यह अमरीकी निर्णय वास्तव में क्षेत्र में शांति की उम्मीद को बढ़ाता है।
ये एक भ्रम है कि यहूदियों को यरूशलम से निकाला जा सकता है। अब ये नहीं हो सकता। अब फिलिस्तीनियों को भी ये समझ लेना चाहिए कि यहूदियों के लिए यरूशलम उनके दिल और आत्मा है। जिस किसी को भी यहूदी इतिहास और विरासत का ज्ञान है वो जानता है कि यरूशलम से यहूदियों का रिश्ता 3000 साल पुराना है।
दूसरी तरफ फिलिस्तीनी विधान परिषद के सदस्य मुस्तफा बरगुती ने अमरीका के फैसले से असहमति जताई है।
आज ट्रंप ने जो किया है वह फिलिस्तीनियों के साथ साथ इसराइल के भविष्य के लिए घातक है। वो एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने न यहूदियों की चिंता की और न फिलिस्तीनियों की।
हमास द्वारा इंतिफादे की घोषणा के बाद मध्य पूर्व का भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में गुम नजर आ रहा है।
प्रियंका दुबे को सुन रहे थे आप, और अब आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और
मैं हूँ सरोज सिंह।
सरोज सिंह भी साथ में हैं। सरोज जी,
सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी चिट्ठियों से। सबसे पहला खत है वो प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने लिखा है,
पीला पोस्टकार्ड
जी। ग्राम कैथनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, अमेठी से लिख रहे हैं, और इनका कहना है कि अक्सर यतेंद्र मिश्र की जो प्रस्तुति है संग संग गुनगुनाओगे वो राजनीति की भेंट चढ़ जाती है, और इन्हें इस बात का बेहद दुख है।
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी, ऐसा पिछले दिनों हुआ है कि कई बार हम यतेंद्र मिश्र की जो विशेष पेशकश होती है रविवार को वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ न कुछ, जैसा कि आपने कहा, राजनीति और खबरों की दुनिया में हलचल होती है। जिस वजह से हम इसको प्रस्तुत नहीं कर पाए। अभी दो या तीन और इसके अंक बचे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर रविवार को आपको ये सुनाएं जब तक कि ये सीरीज समाप्त नहीं हो जाती।
अगला जो खत है वो भी पीला पोस्टकार्ड,
जी हाँ,
मुरारी शाह ठाकुरगंज किशनगंज बिहार से लिख रहे हैं और इनका कहना है कि आपके प्रसारण में कभी कभी एक तरफा खबरें प्रसारित की जाती हैं और इसकी मिसाल और उदाहरण वो देते हुए कह रहे हैं कि गुजरात दंगा का जो समाचार था उसमें कहा गया था कि सिर्फ मुसलमान ही मारे गए हैं, कभी चर्चा नहीं की जाती कि रेलगाड़ी में कार सेवकों को जिंदा किसने जलाया।
भाई अगर आपको याद हो तो जिस दिन गोधरा कांड हुआ था उस दिन विशेष कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर भी खबरें थीं और किस तरह से वो आग लगाई गई और कितने लोग मारे गए इस सब का जिक्र होता है। और जब कोई जैसे हमारे कहते हैं ना कि समाचार का कुछ बहाना होना चाहिए, अगर खबर है तो उसको हम याद करते हैं ज़रूर, ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास वजह नहीं है कि हम गोधरा को याद ना करें, गुजरात दंगों को याद करें या किसी एक घटना को याद करें दूसरी घटना को भूल जाएं, ऐसा नहीं होता।
अगला जो ईमेल है वो बरनाला पंजाब से पीयूष कुमार लिखते हैं और उनका कहना है कि आपकी राय पिछले दिनों जो उन्होंने सुनी आपकी वो उन्हें बेहद पसंद आई, काफ़ी गुदगुदी हुई। राजेश जी क्या खाकर आए थे, इतने एनर्जेटिक कैसे लग रहे हैं?
अरे बाप रे, गुदगुदी हुई नहीं, ये तो हमारे श्रोताओं का कमाल है। दरअसल हमारा क्या कमाल है, आप जैसी चिट्ठियां लिखते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, उसी से हमको ऊर्जा मिलती है। क्यों, आप भी ये महसूस करती हैं ना?
जी बिल्कुल और जब भी नाम आपका रेहान जी का आता है वैसे भी ऊर्जा मुझे मिल जाती है।
अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
अगला ईमेल गौतम दत्ता किशनगंज से लिखते हैं, दिन भर में शशि कपूर के साथ एक पुराना इंटरव्यू प्रसारित किया गया था जो उन्हें बेहद पसंद आया।
शशि कपूर को लेकर के काफी जो श्रद्धांजलियां अपने श्रोताओं ने भेजी हैं उन सबको अगर आप पढ़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा।
जी उसी क्रम में डॉक्टर हेमंत कुमार हैं, ये प्रियदर्शनी रेडियो लिसनर्स क्लब जो कि भागलपुर बिहार में है उसके अध्यक्ष हैं और उस बारे में उन्होंने भी लिखा है कि दिनभर में शशि कपूर के निधन की खबर सुनकर उन्हें बेहद दुख हुआ, लेकिन बीबीसी के साथ साथ मैं भी महान एक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उसमें उन्हें सुमिरन की रिपोर्ट बेहद पसंद आई।
सुमिरनप्रीत कौर ने शशि कपूर पर एक तरह की श्रद्धांजलि अर्पित की थी।
सुरेश अग्रवाल भी उस रिपोर्ट की तारीफ में आगे भी
कहां से लिखते हैं?
ये लिख रहे हैं केसिंगा
केसिंगा उड़ीसा से। जी ये तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। क्या लिखते हैं सुरेश अग्रवाल जी?
इन्होंने वही लिखा है कि सुमिरनप्रीत द्वारा जो श्रद्धांजलि दी गई है उसमें वो भी अपनी भावनाएं जोड़ रहे हैं। अब अगला जो खत है वो है आदर्श राठौड़ की तारीफ में।
अच्छा, आदर्श राठौड़ ने जो दुनिया जहान प्रस्तुत
जी,
किया था।
जी बिल्कुल, उसमें उन्हें नेपाल की रिपोर्ट बेहद पसंद आई लेकिन वाशिंगटन से इरम अब्बासी की जो रिपोर्ट थी उन्हें वो पसंद नहीं आई। उनका कहना था बहुत ज्यादा उर्दू का इस्तेमाल किया था।
ये लिख कौन रहे हैं?
ये लिख रहे हैं महेंद्र सहारण श्रीगंगानगर राजस्थान से।
श्रीगंगानगर राजस्थान से महेंद्र सहारण भी हमें लगातार लिखते रहते हैं। देखिए महेंद्र जी, जहाँ तक इरम अब्बासी का सवाल है, इरम अब्बासी उर्दू सर्विस में अभी तक काम करती थी और हाल ही में वो वाशिंगटन रिपोर्टर हुई हैं, तो हिंदी में जब लगातार वो स्टोरीज़ भेजती रहेंगी, खबरें भेजती रहेंगी, तो उनकी हिंदी भी दुरुस्त होगी। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, चीज़ें धीरे धीरे एक तरह से शेप लेती हैं।
और ये टाइम मैं भी आपसे मांगूंगी, अगर मेरे भी उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन में कहीं कोई गड़बड़ी आपको नजर आए तो हमें भी माफ़ कर दीजिएगा, हम भी सीख रहे हैं राजेश जी के साथ।
ये देखिए बहुत बहुत शुक्रिया।
रामेश्वर लाल लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं ये उन्होंने नहीं लिखा है लेकिन उनका कहना है कि 2010-2011 में जो बीबीसी की टीम थी वो उसे बहुत मिस करते हैं और खासतौर पर राजेश जी के माओवादी के गढ़ से कोई रिपोर्ट भेजी थी उसकी वो तारीफ कर रहे हैं। अब इसमें नहीं पता मुझे राजेश जोशी जी के बारे में कह रहे हैं या राजेश प्रियदर्शी जी के बारे में।
नहीं, वो राजेश जोशी के ही बारे में बात कर रहे हैं। इत्तेफाक से मैंने बिहार में के इलाकों में जाकर के रिपोर्ट की थी लेकिन आपको 2010 और 11 की टीम याद आती है तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस टीम के साथ भी आपका संबंध है, ये संबंध बनाए रखें लेकिन अब समय हमें कह रहा है कि आप जाइए, यानी हम दोनों स्टूडियो से निकलते हैं। चलते चलते पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003 और ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और अब मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार,
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि वो बहुत नीच किस्म के हैं और उनमें कोई सभ्यता नहीं है। नेपाल की जनता ने आज हुए संसदीय चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। प्रशासन को आशा है कि देश के लोकतंत्र के परिवर्तन में ये एक अहम कदम होगा। 65 सालों में ग्रीस का दौरा करने वाले रेचप तैयब एर्दोगान तुर्की के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। ब्रिटिश सचिव बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मध्य पूर्व में संघर्षों के समाधान के लिए पश्चिम के अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यरूशलम को इसराइल की राजधानी मानने पर फिसला हमास ने नए विद्रोह की अपील की है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ आज की सभा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।